लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। धर्मी संकट से मुक्त है, वह विधर्मी के सिर पर पड़ता है। विधर्मी अपनी बातों से अपने पड़ोसी का विनाश करता है, किंतु धर्मी अपने ज्ञान द्वारा बच जाते हैं। धर्मियों की उन्नति पर नगर आनंद मनाता है, किंतु दुष्टों के विनाश पर लोग जय जयकार करते हैं। धर्मियों के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है, किंतु दुष्टों के दुर्वचनों से वह नष्ट हो जाता है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में इस बात पर बल दिया गया है कि धर्मी और धर्मपरायण व्यक्ति का विश्वास ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। धर्मी व्यक्ति अपने विश्वास के कारण और अपने भले कर्मों के कारण ईश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं भुलाते हैं। उनमें यह अनुभूति प्रबल होती है कि ईश्वर हर कठिनाई में उनके साथ होंगे तथा दुख कष्टों को सहन करने की शक्ति और साहस प्रदान करेंगे। उनका विश्वास उन्हें यह ज्ञान कराता है कि इस जीवन और भावी जीवन में भी प्रभु ईश्वर ही उनका उद्धार करेंगे और उन्हें सुख शांति का अनुभव कराएंगे। फिर भलाई में लगे लोग इसी जीवन में कठिनाइयों और दुखों का अनुभव कर लेते हैं, जबकि दुष्ट यह तक नहीं जानते कि भावी जीवन में उन पर कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि अब तक उन्होंने दुख और कठिनाइयों का अर्थ ही नहीं समझा था। इसी अर्थ में सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 9वें पद को समझा जा सकता है। श्रोताओं, विधर्मी पाखंडी होता है और पाखंडियों की पहचान यही है कि वे अपनी बातों से लोगों को तबाह कर देते हैं। उनकी जीभ तलवार से भी अधिक घातक होती है। पाखंडी दया और सद्भावना के बहाने अपने पड़ोसी के विनाश में लगते हैं। वे शरारती तरीकों से अपने पड़ोसियों को लुभाते और पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चापलूसी करने वाली जीभ से अधिक घातक तलवार भी नहीं होती। वस्तुतः जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, और पाखंडी और दुष्ट अपनी जीभ से अन्यों की मौत का कारण बनते हैं। दूसरी ओर सच्चा प्यार दूसरों का निर्माण करना चाहता है। वह उनके विनाश की बात नहीं सोचता, बल्कि भलाई की बात सोचता है। वह उनके कल्याण की बात सोचता है। क्या शुभ है, क्या सुंदर है, बस उसी में उसका मन रमा रहता है। ईमानदारी दुष्ट की कुयोजनाओं को नष्ट करने में सफल सिद्ध होती है। शैतान की युक्तियों का ज्ञान होने से धर्मी उन फंदों से बच निकलता है जो पाखंडी ने उसके लिए बिछा रखे हैं। अपने हृदय में निहित ईश प्रज्ञा और विवेक के बल पर भले व्यक्ति धोखे और छलपूर्ण योजनाओं से बच जाते हैं। भले और धर्मी व्यक्तियों को मिले आशीर्वाद से ही नगर और राष्ट्र की उन्नति होती है, किंतु दुष्टों के दुर्वचन विनाश की ओर ले जाते हैं। अस्तु श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ का परामर्श यही है कि व्यक्ति सदैव भला सोचें और भला करें, क्योंकि ऐसा कर ही वे अपने जीवन को शुद्ध रख पाएंगे और ईश्वर की कृपा और अनुग्रह उन पर सदा बनी रहेगी।
बोल रे अंतर ध्यान में मनवा, बोल रे अंतर ध्यान में मनवा, ईश पिता का नाम ले मनवा, ईश पिता का नाम ले मनवा, सुख शांति का मार्ग ले मनवा, सुख शांति का मार्ग ले मनवा, बोल रे अंतर ध्यान में मनवा।
आगे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 12वें, 13वें और 14वें पदों में लेखक कहता है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह मूर्ख है, किंतु समझदार व्यक्ति मौन रहता है। गप्पी गुप्त बातें प्रकट करता है, किंतु विश्वासी उन्हें छिपाए रखता है। नेतृत्व के अभाव में राष्ट्र नष्ट हो जाता है, किंतु परामर्शदाताओं की भारी संख्या में कल्याण है। श्रोताओं, सच पूछें तो प्रज्ञा और विवेक का मार्ग ही प्रेम और सम्मान का मार्ग भी है। जब कोई अपने पड़ोसी का तिरस्कार करता है तो यह उसके श्रेष्ठ ज्ञान और विवेक का प्रमाण नहीं है, बल्कि उसकी बुद्धि की विफलता है। अस्तु ऐसा व्यक्ति जो पड़ोसी को दुख देता, पड़ोसी की हानि करता, वह मूर्ख है, उसमें ज्ञान का अभाव है। जबकि जो व्यक्ति मौन रहता है वह समझदार है। बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं में समझ होती है, वे जानते हैं कि कब और कौन से अवसर पर बोलना उचित है और कब मौन रहना ही समझदारी है। किसी के आक्रोश को रोकने के लिए एक समय और स्थान होता है जिसे वे भली प्रकार जानते हैं। वे जानते हैं कि कब प्रेम और सम्मान से वे अपनी बात अन्यों तक पहुंचा सकते हैं और शांति कायम करने में योगदान दे सकते हैं। श्रोताओं, गप्पी का अर्थ है फिजूल की बात करने वाला, बेकार की गपशप लड़ाने वाला, अनियंत्रित बात करने वाला, मन गढ़ंत कहानी सुनाने वाला, और ऐसा कर वह रहस्यों को उजागर कर देता है। किस्से सुनाना और अन्यों की छिपी बातों को उजागर करना उसका व्यवसाय बन जाता है, वह इसमें आनंद लेने लगता है। गप्पी इस गुमान में रहता है कि ऐसी बातें करने से उसका मान सम्मान बढ़ता है, ऐसा कर वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। रहस्यों को अन्यों पर प्रकट कर वह खुद को बलवान समझने लगता है। वह समझता है कि इससे उसकी उन्नति होगी, किंतु यह सब उसका भ्रम मात्र होता है। बाइबल आचार्य ब्रिजेस गप्पी व्यक्ति पर टीका करते हुए कहते हैं, गपशप लड़ाने वाले क्रूर आदमी के करीब रहना सुरक्षित नहीं है, जो अपने साथी प्राणियों की खुशी से खिलवाड़ करता है, क्योंकि जितनी फुर्ती से वह हमारे साथ अपने पड़ोसी का विश्वासघात करता है, उतनी ही फुर्ती से वह पड़ोसी से हमारे विषय में भी विश्वासघात करेगा। इसके विपरीत बुद्धिमान पुरुष या महिलाएं वफादार होती हैं, और वफादार लोग जानते हैं कि किस बात की चर्चा किस समय करना उपयुक्त है और किस मामले को छिपाकर रखना हितकर है। श्रोताओं, कब क्या कहना और कब मौन रहना, इसके लिए भी मार्गदर्शन की आवश्यकता रहा करती है, और जो लोग भलाई में लगकर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें यह ज्ञान मिल जाता है कि कौन सी बात बोली जानी चाहिए और कब मौन रहना हितकर है। प्रभु ईश्वर में विश्वास के कारण, ईश नियमों पर भरोसे के कारण वे प्रेम और प्रज्ञा दोनों से अभिभूत हो जाते हैं और गोपनीयता के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। 14वें पद में लेखक कहता है, नेतृत्व के अभाव में राष्ट्र नष्ट हो जाता है, किंतु परामर्शदाताओं की भारी संख्या में कल्याण है। श्रोताओं, नेतृत्व और मार्गदर्शन की जरूरत सभी को हुआ करती है। हमारे पास अधिकार की व्यवस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, उन्हीं के अधीन रहकर हम अपने दैनिक कार्यों को अंजाम देते हैं, और जब नेतृत्व ही विफल हो जाता है, जब नेतृत्व करने वाला ही स्वार्थ और अहंकार के अंधेरे से घिर जाता है, तब नेतृत्व पाने वाले तितर बितर हो जाते हैं, और राष्ट्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। राष्ट्र के शासनकर्ता जब स्वार्थ के कारण भ्रष्ट नीतियों को अपनाने लगते हैं, तब वे राष्ट्रवासियों का नेतृत्व करने में असमर्थ हो जाते हैं और राष्ट्र को ही नष्ट कर देते हैं। श्रोताओं, परामर्शदाताओं की भारी संख्या में कल्याण है, यह कहकर सूक्ति ग्रंथ के लेखक ने यही कहना चाहा है कि यदि बहुत से परामर्शदाता होंगे तो बहुत सी राय मिलेंगी जो सुरक्षा और शांति के लिए बहुमूल्य सिद्ध होंगी। इसके विपरीत जब एक ही व्यक्ति सब कुछ का निर्णय खुद लेना चाहता है, तब वह खुद तो अपना अहित करता ही है, सारे देश को भी विनाश की ओर ले जाता है। इतिहास के अंतराल में हमें कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी हठधर्मी, जिद, स्वार्थ और अहंकार के कारण राष्ट्र तबाह हो गए। हिटलर के बाद जर्मनी, गद्दाफी के बाद लीबिया, बशर अल असद के बाद सीरिया और इन दिनों यूक्रेन में जो तबाही मच रही है, वह तानाशाहों की क्रूरता और मनमानी का उदाहरण नहीं तो क्या है? श्रोताओं, यह याद रखा जाए कि किसी भी पुरुष या महिला के पास सभी वरदान और प्रज्ञा नहीं होती, इसलिए निर्णयों में अधिक से अधिक ज्ञान और सुरक्षा पाने के लिए अनेक सलाहकारों के सुझाव संपूर्ण देश के लिए हितैषी होते हैं। यीशु मसीह के प्रारंभिक अनुयायियों ने भी अपने सम्राट के लिए यही प्रार्थना की थी कि प्रभु ईश्वर उन्हें न्यायपूर्ण शासन के लिए सेनातुम फिदेलेम अर्थात एक वफादार परिषद प्रदान करें।
बोल रे अंतर ध्यान में मनवा, बोल रे अंतर ध्यान में मनवा, ईश पिता का नाम ले मनवा, ईश पिता का नाम ले मनवा, सुख शांति का मार्ग ले मनवा, सुख शांति का मार्ग ले मनवा, बोल रे अंतर ध्यान में मनवा, बोल रे अंतर।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कैथोलिक कलीसिया प्रभु येसु ख्रिस्त के परम पावन शरीर एवं रक्त का महापर्व मनाती है। प्रभु येसु ने यूखरिस्त संस्कार की स्थापना कर हमारे लिए अपने शरीर को आध्यात्मिक भोजन के रूप में अर्पित कर दिया है। संत पापा ने 16 जून को पर्व की याद दिलाते हुए लिखा, येसु मौन में यूखरिस्त के रहस्य में बोलते हैं। वे हमें हरदम याद दिलाते हैं कि उनका अनुसरण करने का अर्थ है अपने आप से बाहर निकलना और अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं रखना, बल्कि उनके लिए और दूसरों के लिए उपहार के रूप में अर्पित करना। संत पापा फ्रांसिस ने विवाहित जीवन के लिए नव दीक्षांति यात्रा कार्यक्रम बनाने हेतु दिशा निर्देश के लिए प्रस्तावना लिखी है तथा कलीसिया से आग्रह किया है कि वह विवाह के लिए तैयारी कर रहे भावी दंपतियों की मदद करें ताकि टूटे परिवारों की पीड़ा को दूर किया जा सके। लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परमधम पीठे परिषद ने बुधवार को स्थानीय कलीसियाओं के लिए एक नया प्रेरित दिशा निर्देश जारी किया जो विवाहित जीवन के लिए नव दीक्षार्थी यात्रा कार्यक्रम बनाने की ओर रास्ता तैयार करेगा। प्रस्तावना में संत पापा ने कहा है कि यह अमोरिस लेतित्सिया परिवार वर्ष के फल को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि कलीसिया हर युग में विवाह संस्कार एवं पारिवारिक जीवन में निहित कृपा की सुंदरता एवं विपुलता की घोषणा फिर से करने के लिए बुलाई जाती है। दस्तावेज सच्ची नव दीक्षा की ओर रास्ता दिखलाता है जो वयस्कों को प्राचीन समय में दिए जाने वाले बपतिस्मा पर आधारित है ताकि उन्हें विश्वास की चट्टान पर विवाह संबंध स्थापित करने में मदद दिया जा सके। कई जोड़े विवाह के पूर्व किसी तरह की तैयारी करते हैं और इस तरह वे अपने विवाह को एक कमजोर नींव पर स्थापित करने की जोखिम उठाते हैं जो कुछ ही समय में टूटकर गिर जाता और संकट आने पर तुरंत ध्वस्त हो जाता है। वैवाहिक जीवन में असफलता अपने साथ बड़ा दुख लाता और लोगों में गहरा घाव छोड़ता है। वे भ्रमित, कड़वाहट और सबसे दुखद मामलों में प्रेम की बुलाहट में कभी विश्वास नहीं कर पाने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं जबकि स्वयं ईश्वर ने इसे मनुष्यों के हृदय में डाला है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया को उन दंपतियों का साथ देना चाहिए जो न्याय की चाह से प्रेरित होकर कलीसिया में विवाह करना चाहते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों में से किसी को अधिक प्यार नहीं करती, उसी तरह कलीसिया अपने बच्चों के साथ भेदभाव की भावना नहीं रख सकती। अतः कलीसिया को विवाह की तैयारी कर रहे दंपतियों के लिए उचित समय एवं ऊर्जा देना चाहिए, जैसा कि वह उन व्यक्तियों से करती है जो पुरोहित बनना अथवा धर्म सामाजिक जीवन अपनाना चाहते हैं। विवाहित दंपति सचमुच जीवन के रक्षक हैं, न केवल इसलिए कि वे बच्चों को जन्म देते, उनका पालन पोषण करते और उन्हें बड़ा करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल करें और अपने संपर्क में आने वाले विकलांग तथा गरीब लोगों की भी सेवा कर सकें। संत पापा ने स्थानीय कलीसियाओं में भावी दंपतियों के लिए सच्चे नव दीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने की इच्छा दोहराई, जिसमें संस्कार के सभी रास्ते, विवाह की तैयारी का समय, विवाह उत्सव एवं उसके बाद के वर्ष शामिल हों। संत पापा ने कहा कि लक्ष्य है जीवन की यात्रा में दंपतियों के साथ एक रास्ते पर चलना, शादी के बाद भी, विशेषकर संकट या निराशा की घड़ी में। दस्तावेज एक उपहार एवं एक जिम्मेदारी दोनों है, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में सामग्री प्रदान करता है, जबकि स्थानीय कलीसियाओं को सांस्कृतिक संवेदना के आधार पर ठोस कार्यक्रमों में अपने दिशा निर्देशों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। संत पापा ने कहा, मैं कलीसिया के चरवाहों एवं उनकी मदद करने वालों से विनयशीलता, उत्साह एवं रचनात्मकता की अपील करता हूं। परिवारों के प्रशिक्षण, घोषणा और साथ देने के महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु, जिसकी मांग पौत्रात्मा हमसे इस समय कर रहे हैं। संत पापा ने अपनी प्रस्तावना के अंत में कलीसिया के चरवाहों से अपील की है कि वे इस नई जिम्मेदारी के सामने साहसी बने। उन्होंने कहा, आइए हम भावी परिवारों की सेवा में अपना मन और दिल लगाएं। मैं आश्वासन देता हूं कि प्रभु हमें पुष्ट करेंगे, हमें प्रज्ञा एवं शक्ति प्रदान करेंगे, वे हमारे उत्साह को बढ़ा दें और सबसे बढ़कर सुसमाचार प्रचार की आनंदमय एवं सुकून देने वाली खुशी दें, जब हम नई पीढ़ियों के लिए परिवार के सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। ख्रिस्ती व्यवसाय एवं अन्य धर्मों के अनुयायी युद्ध के कारण पीड़ा और वैश्विक तनाव के बीच 21 जून को विश्व शांति हेतु ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। ख्रिस्ती एकता एवं अंतरधार्मिक वार्ता की प्रतिनिधि नेलिता अंकोरा ने कहा, इस ऐतिहासिक क्षण में जब पूरी मानवता के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती मंडरा रही है, हमारी सोच बाइबल में वर्णित उस घटना की ओर जाती है जब लाल समुद्र पार की गई थी। जिस तरह मूसा ने मुक्ति के रास्ते की ओर इशारा किया था, उसी तरह सभी धर्मों के धर्मगुरु एक साथ काम करना शुरू करें, ताकि एक साथ ईश्वर के प्रति ज्ञात देश शांति एवं विकास तक पहुंचा जा सके। प्रार्थना सभा का आयोजन नेलिता अंकोरा ने किया है, जिसको 21 जून को शाम 4 बजे रोम समय अनुसार सम्पन्न किया जाएगा। शांति हेतु अंतरधार्मिक प्रार्थना ऐसे समय में हो रही है जब विश्व कई स्थानीय एवं वैश्विक तनावों का सामना कर रहा है, जिनके बारे संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि यह टुकड़ों में लड़ा जा रहा विश्व युद्ध है। संत पापा ने लचीविलता कैथोलिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा है, मेरे लिए आज तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा हो चुकी है। यह हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि उस मानवता को क्या हो गया है जो एक ही सदी में 3 विश्व युद्धों का सामना कर रहा है। यह एक विपत्ति है। संत पापा ने यह बात रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के संबंध में कही है, जिसको उन्होंने बुधवार को भी याद किया और शांति हेतु सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। विश्व शांति हेतु अंतरधार्मिक प्रार्थना का आयोजन संत पापा की इच्छा पर की गई है, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होकर युद्ध के अंत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अंकोरा के अनुसार अंतरधार्मिक विश्व शांति हेतु प्रार्थना सभी लोगों के बीच एक ठोस जवाब की खोज है, ताकि मानवता को संघर्ष के लाल समुद्र से मानवता और विकास के तट की ओर बढ़ने में मदद मिल सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।